نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عرش الٰہی حقیقت اور تقاضے آج ہم اس کا ڈے 3 کریں گے اور ڈے 3 میں ہم پچھلے دو دنوں کی طرح آج بھی ایک دعا سے شروع کریں گے کیونکہ دعائیں جو ہیں یہ کاموں کو آسان کر دیتی ہیں دور قرآن 2022 میں ہم نے دعاؤں کو دیکھا کہ وہ اتنی بڑی طاقت ہیں کہ جیسے ڈوبتے کے لیے چپو اور تیرتا ہوا شخص اگر کسی وقت گرنے لگتا ہے تو اس کو جو ہاتھ مل جاتا ہے وہ دعا ہے. ہم اپنی زندگی میں ہر وقت پریشان ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہماری زندگی میں زیر بحث ہوتا ہے. ہم اپنی زندگیوں کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر سکیں اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہنا چاہتے ہیں اتنا اپنا دعاؤں کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے. تو عرش سے متعلق دعاؤں میں سے آج دعا نمبر 3 ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے. کرتے تھے کہ پڑھتے تھے؟ دعائیں پڑھی جاتی ہیں کہ کی جاتی ہیں؟ دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا دعائیں مانگی جاتی ہیں؟ مانگی جاتی ہیں. اور کب پڑھتے تھے, کب مانگتے تھے, کب کہتے تھے؟ جب پریشانی ہوتی تھی. ہمیں ہوتی, ہم جس طرح پریشانی کے وقت پہ سیل فون ڈھونڈ کر کانٹیکٹس کو سرچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کال کر, اس کو پوچھ, اس کو بتا, وہ نہیں مل رہا, فون نہیں اٹھا رہے, میاں صاحب نہیں ہے, بچے نہیں ہیں, یہ نہیں وہ نہیں, کوئی بھی ذہن میں لے آئیے. اور اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے, آپ کی زبان مبارک پہ کیا الفاظ تھے. پہلی دفعہ میرے ساتھ دہرائیں ایک ایک لفظ کر کے, پھر سمجھیں گے. لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم. اب اکٹھا پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم. پھر آگے دوبارہ ہے, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم رب العرش العظیم. پھر تیسری دفعہ دیکھیے وہی جملہ, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. آپ دیکھیے کہ تین دفعہ اس میں کلمہ ہے. اب ذرا سے اس کے ترجمے پہ غور کریں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بہت بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے. ہم کن سہاروں میں کھوئے ہوتے اپنے دکھوں غموں بیماریوں اور پریشانیوں کے وقت. پھر روتے بھی ہیں, ابا نہیں ہے, ماں نہیں ہے, شوہر نہیں رہا. یعنی ہمارے اتنے معبود ہیں نعوذ باللہ کہ جن کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا ایک گمان ہے کہ یہ ہمارے دکھ دور کریں گے, ہماری تنہائیاں دور کریں گے, ہماری پریشانیاں دور کریں گے. اور اللہ کے نبی کی زبان پہ تین دفعہ ایک کلمہ, تو لا الہ الا اللہ, پھر دیکھیں لا الہ الا اللہ, پھر دیکھیں لا الہ الا اللہ. پہلی لین جو آپ کو دیکھ رہی ہے اس میں تین دفعہ کلمہ, پھر پہلے کلمے کے بعد دیکھیے کیا ہے. اب اس کا ربط دیکھیں گے تو آپ کو دعاؤں کی خوبصورتی پتہ چلے گی. اور یہ جو ہم نے دعاؤں کی کتابیں بنا کر پہاڑوں کی طرح ان کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے نا, اسی لیے شاید ہماری ابھی تک سنی نہیں گئی, ورنہ بندہ مانگے اور رب نہ دے یہ نہیں ہوتا. रब देता है, कभी जाहिर के पर्दों में देता है, कभी छुपे हुए, लेकिन दिल को तसल्ली हो जाती है कि दुआ कबूल हो गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह पहली दफा कलमा है, ठीक है। पहली सिफत अल्लाह की क्या है? अल अलीम, मेरे हाल को वो जानता है। क्या जरूरत है अपने गम दुख तकलीफें सुनाने की और सोशल मीडिया पे डालने की? ये बीमारियां भी हो सकती, जुदाइयां भी हो सकती, तन्हाइयां भी हो सकती, ये शहनाइयां भी हो सकती। ना हम खुशी में अपने में रहते हैं ना गमों में, हर वक्त हमें लोगों की फिक्रें लगी होती हैं। हमारे इस वक्त पे लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कैसे खुश होंगे, यानी इंसानों में खोए रहने वाले लोग हैं आज हम, जिनके बीच में मोहम्मद अरबी को भेजा गया। अगर आज के दौर के मुसलमान, और हम अमूमियत पे कयास करते हैं, हर एक ऐसा नहीं भी होगा, लेकिन अमूमियत पे कयास करके देखें, तो अगर अल्लाह के नबी हम जैसे लोगों में भेजे जाते तो वो हमें इन जीते जागते माबूदों से हटाते, और वो लोग हैं, हम इंसानों में खोए रहते हैं। मेरी ज़रूरतें कोई पूरी कर दे, मेरे हालात को कोई जान ले, मुझे कोई बता दे। और आज सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को और ही डिस्ट्रैक्शंस में डाल दिया। कभी तन्हाई में कभी ख्याल भी आता है ना किसी चीज़ का, तो अब तो वो तन्हाई भी मुयस्सर नहीं। किसी ने कहा कि तुम जानना चाहते हो तुम क्या हो, खामोश रह कर देखो, सच्चे हो के झूठे हो, सादिक हो के अमीन हो, खाइन हो के क्या हो, दुनिया तुम्हें क्या कहती है, तुमने सब्सक्राइब्स को क्या करना, तुमने लाइक्स को क्या करना, तुम्हें तो हर चीज तुम्हारे दिल की धड़कनों से मिलेगी, क्योंकि बलिल इंसान अला नफ्सी ही बसीरा वलो अल्का माजीरा, बल्कि इंसान अपने नफ्स पर खुद आगाह है, उसको पता है कि मैं कितने पानी में हूं। तो अल अलीम कहकर आपकी मेरी दुआ का किबला किधर रोक दिया कि दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। अल अलीम, अल अलीम देखिए फाइल का वजन है, जिन्होंने अल अस्माउल हुस्ना सीरीज की है, नहीं की तो अभी भी जाकर आप सुन सकते हैं, अमेज़ बाय अल अस्माउल हुस्ना, एक एक नाम पढ़ते जाएं आपको लग पता जाएगा कि अल अलीम क्या है। अलीम, फाइल, रहीम, कंटिन्यूस, ये नहीं कि कभी उसको पता चलता है, जब सिग्नल मिल जाते हैं तो उसको पता लग जाता है, तो जब नहीं मिलते तो वो फिर घंटों आउट ऑफ रेंज होता है। ये वाईफाई कोड अगर मेरा नेट ना हो तो रास्ते में मैं किसी से भी बात ना कर पाती, ऐसी था ना यहाँ। अगर आज अल्लाह ना करे अगर अभी ये सिग्नल ड्रॉप हो जाए, तो जो हमारी आवाज़ बाहर जा रही है ये नहीं जाएगी ना। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए, अल्लाह को किसी गैजेट किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं। कभी कभी तो लोग भी हमें जान लेते हैं, स्पेशली जब हम उनको खुद ही बता रहे होते हैं। तो अल्लाह की हस्ती अल अलीम, आगे देखिए अल हलीम, हिल्म वाला, क्या बता रहा है आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह का ये कहना, और उसके बाद अल अलीम और हलीम, कि वो अल अलीम है, वो तुम्हारे हालात को भी जानता है। और ये जो तुम्हारा बड़ा दिल कह रहा है ना कि जिसने मेरे पे ज्यादती की, जिसने मुझे दुख दिया, जिसने मुझे जलाया कुड़ाया, मैं जाकर उसका सर फाड़ दूं, या मेरे बिहाफ पे जाके कुछ हो जाए और अल्लाह ही जाकर उसके घर पे कोई बम फेंक दे, तो नहीं, वो अल हलीम है, तुम्हें हिल्म सिखा रहा है। और जिन्होंने ये सीरीज की है उनको मैंने वहां भी बताया हुआ है कि लफ्ज अल अलीम और हलीम अमूमन इकट्ठा आता आमतौर पे, क्यों? इल्म और हिल्म इकट्ठा होगा ना फिर अंदर जाता है। आज इल्म बड़ा है, चुलबुलापन ही नहीं खत्म होता हमारा, हलीमी कोई नहीं है, हमारी आवाजों में ऐसी गुनगुनाहट, ऐसी गरज चमक है कि वो जो इल्म है वो भी लोगों के कानों से ऊपर ही चला जाता है हमारी बातें, हिल्म नहीं है। और जब इल्म और हिल्म जमा होता है तो हिकमत में ढलता है। आज हम बहुत सारे लोग इल्म की दास्तानें सुनाते हैं लोगों को, दिन रात सुनते भी हैं, उसकी सुन, उसका आगे कर, उसकी बात, उस, और अंदर हिल्म कोई नहीं, हिकमत कोई नहीं। जब वक्त आता है फिर सवाल ही किसी से पूछते हैं, भाई आप तो सारा दिन व्हाट्सएप के मैसेजेस इधर से उधर करते हैं, आपका दिल नहीं अभी तक फुरकान बना? वमन युमिन बिल्लाही यख्ती कल्बा, भी दिल की ये कैफियत नहीं हुई जो अल्लाह ने सूरह मुमतहिना में कह दी कि जो अल्लाह पे ईमान लाएगा अल्लाह उसके दिल को खुद ही गाइड करेगा। इसकी वजह ये कि हिल्म नहीं है। और हलीम के लफ्ज़ को तो आप सारों ने सुना होगा ना, कोई उसको दलीम कहता है, कोई हलीम कहता है, लेकिन ये सबको होता है कि घोटनी पड़ती है, सारी दालें सारे अनाज और वो सारे गल्ले डाल भी दिए गए होंगे ना, घोटे ना तो हलीम दाल रहती है, दाल का दाना अलग, गंदम का दाना अलग, गोश्त की भी तुरियां अलग होंगी। हलीम नहीं होती वो, हलीम खुटी भी। अब आप पकड़ के उसको ब्लेंडर में पीसते हैं, वो भी कोई हलीम नहीं रहती। वो जिसको घोट घोट के लकड़ी के चमचे से हिलाते जाएं और उसको सारी रात हल्की आंच पे पका दे, इल्म भी ऐसे घुलता। इंस्टेंट इल्म कोई इल्म नहीं होता। आप कहते हैं झट से कोई आए और आपके गले में डाल कर तो आपको कह लो फटाफट पी लो तो जो खत्म। इसके लिए खून जलाना पड़ता है। वो कहते हैं ना, रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जब ऑलिव्स को क्रश किया जाता है तो उसमें ऑलिव ऑयल निकलता है, ऑरेंज को जब स्क्वीज किया जाता है तो उसमें से जूस निकलता है। हम बगैर मिन्नतों के सब कुछ मिल जाए, मिले भी सब कुछ, लेकिन हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है, अभी हमारे पास इतनी सोचे नहीं, अभी हमारे पास इतना माल नहीं, अभी हमारी दुनिया ही नहीं खत्म हो रही। ये खत्म हो जानी है एक रात में, सिर्फ ये सांस की डोरी खत्म होगी। अभी तक हमें इतनी हिकमत नहीं समझ आई कि किस बात पे यस कहना है, किस दावत पे नो कहना है, कहाँ हमारा जाना मस्ट है, कहाँ नहीं जाना। और जाना मस्ट है तो पहले हमारी बात मानो फिर आएंगे। अभी इतनी हिकमत ही नहीं आई। वो कहते हैं जैसे हेड़ का हेड़, रेवड़ का रेवड़ शादी का नाम सुन के ऐसे पहुंच जाता है वहां जैसे आपके बगैर होनी नहीं है। कोई नहीं, फिर वहां जाकर बैठ के कुड़ेंगे, फिर बाद में आकेंगे तौबा तौबा क्या था वहां। तो आपको भी इतनी हिकमत नहीं आई, आपको अपनी इज्जत बेइज्जती का ख्याल नहीं है? कोई अपनी बेइज्जती कराने कहीं जाता है? कहीं आपको शहर में किसी जगह कोई मैसेज मिले कि वहां दो लोगों का दंगल हो रहा है, आए आप भी उसमें हाथ डालें, कोई दो सियासी रहनुमा लड़ रहे हैं, जाइए जरा आप भी बीच में उनके नारे लगाएं, झंडे उठाएं, जाता है कोई? तो हम अपनी जिंदगियों के फैसलों में इतने गैर हकीम क्यों हैं? ये वजह है कि हम आज तक इम्प्लीमेंट दीन को नहीं कर सके, कुरान पढ़ने के बावजूद भी, पाकिस्तान लेने के बावजूद भी। नो नहीं कहना आता, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारी बिल्कुल फेल है। नाराज हो जाएंगे, वो मेरी सास की फलां सहेली के बच्चे की शादी है, वो मेरे मियाँ के फलां फलां की दोस्त की शादी है। यानी गोया के जाना है भाई, और जाके फिर नेक है तो आके गिफ्तें भी करनी है, नहीं कहे नेक तो कहते बड़ा मजा आया। यानी आप देखिए कि ये दुआएं जो है ना, मुझे तो लगता है दुआएं बस काफी हैं अकीदे के लिए। मैं आपको पूरा अकीदा दुआओं में से अल्लाह की रहमत से बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि है क्या अकीदा, अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक। तो क्या पता चला, परेशानी के वक्त पे अल्लाह के नबी अल्लाह के अलीम, अलीम और अल हलीम होने की बात करके कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरे लफ्जों में ये क्या है, वो जिसको कहते तरले मिनते, कह रब झोली तेरे आगे है, इसमें खैरात सिर्फ तू ही डाल सकता है। पहला लफ्ज ला है, पहले सब सहारे काटो, सारी डोरियां काटो, फिर तुम्हें अल्लाह का होना समझ आएगा। फिर दोबारा देखिए अब अगली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह, दोबारा वही। हमने तो अभी तो कलमे को नहीं पढ़ा, अभी तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह ही नहीं समझ आता। चलिए और थोड़े बूढ़े हो ले, बचपन से पैदा होते ही कान में अजान ला इलाहा इल्लल्लाह की, हर मौके पे ला इलाहा इल्लल्लाह था, लेकिन नहीं समझ आता। ठीक है कलमा ही पढ़ लो, सवा लाख ही पढ़ के रख लो, कभी एक बार गौर तो करो ये इलाह क्या है, ये अल्लाह क्या है। 4 दिन में हमने अमेज़ पर अस्माउल हुस्ना में लफ्ज़ अल्लाह को किया था। आज भी इसी यूट्यूब चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाइए, अमेज़ पर अस्माउल हुस्ना सर्च करें, आपको मिल जाएगा। हमें इलाह ही नहीं पता, लफ्ज़ अल्लाह ही नहीं पता। चलिए अब ये तो वक्त नहीं है इन सारी बातों को बताने का। अगला लफ्ज देखिए, रब्बुल अर्शिल अजीम, जो रब है अर्शे अजीम का। रब का लफ्ज पीछे भी बात हुई थी ना, रब यो रब्बी तरबिया, ये नहीं कहा। देखिए ना, रब्बुल अर्शिल अजीम कहने के बजाय इलाहुल अर्शिल अजीम, अलवदूदुल अर्शिल अजीम। अल्लाह रब है तो अल्लाह इलाह भी तो है ना। रब कहकर बता दिया कि जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाली जात, तुम्हें मां के पेट में एक छोटे पानी के कतरे से एक बेबी की शक्ल में ढालने वाली जात, उसको पता है कि तेरी क्या जरूरत है। यानी लफ्ज रब में 6 चीजें होती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में अलूहियत है, उसके अंदर और 9 चीजें हैं। और जब लफ्ज रब बोलते हैं तो कोई कारसाज नहीं मगर वो, कोई राजिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई इज्जत जिल्लत देने वाला नहीं मगर अल्लाह। तो आपकी गोदों के अंदर खेलते बच्चे अब आपके कद से बड़े हो गए, किसने किया? अल्हम्दुलिल्लाह रब ने किया। और अल अर्शिल अजीम, यहां पहली बात, यहां बस इतना इशारा है कि जिसने इतने बड़े अर्श को थामा हुआ है, क्या वो तुम्हारे मामलात से गाफिल होगा? उसकी मैजिस्टी, उसकी बड़ाई का तस्करा। देखिए, अल्लाह भी अल अजीम है तो अर्श भी अल अजीम है। अल्लाह जब अजीम है, अल अजीम है, तो उसका अर्श भी अल अजीम है। पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी दुनिया में बिलियन एरियन हमेशा बिलियन एरियन नहीं रहता, करोड़पति है तो आजकल लखपति, कल का कखपति है ना। अल्लाह की सिफात जो है ना, अल्लाह के मामलात भी उसी तरह हैं जैसे अल्लाह ताला। कुरान भी अजीम है, ठीक है। खैर, आगे चलिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं कोई इला मगर अल्लाह, रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्थ। ये क्या हुआ? पहले किसका रब था? अर्शे अजीम का, ठीक है। अब रब्बुस समावात, आसमानों का रब, फिर अब रब्बुल अर्थ, जमीन का रब, और चौथी दफा था रब्बुल अर्शिल अज़करीम। अगर आप इस दुआ को ब्रेक डाउन करें ना, इस 3 दफा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसी नाते से लफ से अल्लाह भी 3 दफा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें रब का लफ्ज 4 दफा अलग अलग करके लिख रहे हैं ना, तो पहले रब्बुल अर्शिल अजीम, फिर रब्बुल समावात, फिर रब्बुल अर्थ, फिर रब्बुल अर्शिल करीम। 4 चीजों का रब होने की बात अल्लाह ने की, यानी अर्श अजीम का रब, आसमानों का रब, जमीन का रब, और फिर अर्श करीम का रब। और फिर 2 दफा यहां लफ्ज अल अर्श, और फिर एक जगह अल अजीम है तो एक जगह अल करीम है। मांगा क्या है? परेशानी लगी हुई है। आज भी आपको इस दिन मुस्लिम में ये परेशानी की दौ में मिलेगी, हर जगह इसकी डिटेल्स हैं। और बुखारी के अल्फाज हैं 7426 नंबर की। क्या पता चला? दुआएं जो है ना, वो सिर्फ अल्लाह की तारीफें हैं। कुरान की दुआएं देख लें, हदीस की देखें, इसी से रिलेट कर लेंगे। आप सबको जुबानी आती होगी आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, पाक है तू और मैं जालिम। मांगा क्या? कोई आपने कोई एक बार भी कहा वो मियाँ की नौकरी चली गई है, वो आ जाए, बच्चा भाग गया घर से, आ जाए? दुआ ये है अल्लाह और बंदे का ताल्लुक, इसमें भी कुछ नहीं मांगा। असल में ये ऐसे, जैसे बच्चे को दर्द होती है ना, छोटे बेबी को होती है ना, तो वो तो रोता ही रहता है। फिर माँ खुद ही गैस करती है, इसके कान में दर्द है, नहीं इसका पेट सख्त हुआ है, इसको गैस हो गई है, बच्चा तो नहीं बोलता। वो कैफियत लाइए, एक न्यू बॉर्न बेबी जो भी बोल नहीं सकता, उसके इशारे किनायों को माँ जानती, उसकी रोने उसके चिल्लाने से माँ जानती है कि इसको कोई गड़बड़ है आज। तो क्या आपका रब, जिसने वो माँ दी है, वो आपके दुख में नहीं जानता आपको? क्या आपने जरूर पढ़ा पढ़ के सुनाना है उसको, अल्लाह जी ये हो गया, फलाना मेरे साथ ये कर गया, मैं ये करूं। हमारी दुआएं तो पूरी स्टोरीज हैं, उसके दुख, उसकी बातें, उसकी कहानियां, उसने ये कर दिया, ये आह नहीं है। अगर आपकी ये अल्लाह तला के साथ फीलिंग नहीं है, तो वो पहाड़ों वाली दुआएं हैं जो किताबें खोल खोल के पढ़ते हैं। आप तो तवाफ में भी दुआएं किताबें खोल के पढ़ रहे होते हैं, आप तो हर मौके की दुआ किताब खोल के पढ़ते हैं। पढ़िए सुन्नत दुआएं, पढ़िए, देख के भी पढ़ लें, पर उसकी रूह दिल में से उतारिए। तो क्या पता चला? अल्लाह तला आपकी मेरी दुख तकलीफों को दूर करता है। नेक्स्ट हमारा स्लॉट, जो हमने पिछली दफा भी बात की थी और आज उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करके आगे चलेंगे, क्यामत की कुछ बातें। हम लोगों ने अल्लाह ताला की कुरान और नबी सल्लम की अहादीस से देखते हुए कि क्यामत के दिन का जो नक्शा हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिलता है, वो कैसा होगा, उस पर कुछ बातें हुई थी। और उसी में से क्यामत के जलजले से शुरू करके, और हकीकत है कि क्यामत का जलजला ही वो चीज़ है कि जो इंसान की आंखें खोलेगा, रूह के सफ़र से बात शुरू होके माँ के पेट की ज़िंदगी, फिर वहाँ से दुनिया, फिर कब्र, फिर सूर फूंका जाना, हशर के मैदान में पहुँच चुके थे। अगर आपको पिछली बातें याद हो, आज थोड़ी सी बात शुरू करूँगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से, क्योंकि मैदान हशर में जो कुछ होने वाला है, उसमें एक बहुत बड़ा अमल, बहुत बड़ा काम नबी सल्लम की गवाहियों का है, और क़यामत के दिन हम नबी सल्लम के इतने शुक्रगुजार होंगे और अल्लाह के भी कि उसने हमें अपने प्यारे नबी के साथ भेजा। तसव्वुर की निगाह में खुद को लाइए कि मैदाने हशर में सब पहुंच चुके हैं, सूरज सवा नेजे पे है, जो मारूफ बात हम कहते हैं, पिछली क्लास में आपने वो डिस्टेंस भी नोट किया। लोग थक जाएंगे और इतने थकेंगे कि अल्लाह ताला हिसाब शुरू करा दें, चाहे हमें जहन्नम में भेज दे। आदम अलैहि सलाम के पास आएंगे, आदम अलैहि सलाम से कहेंगे कि ऐ आदम अलैहि सलाम, आपको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह भूकी, फरिश्तों से सजदा कराया, आपको जन्नत में जगह दी, आज आप हमारे लिए सिफारिश कर दें कि बस अल्लाह हिसाब शुरू कर दे और हमें हशर की तकलीफ से निजात दे दे। आदम अलैहि सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी हुआ ना आइंदा होगा। मुझसे जन्नत में अल्लाह की नाफरमानी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता। तुम लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। आपने महसूस किया, आदम जिनको ना सिर्फ यह है कि अल्लाह ने माफ करके दुनिया में भेज दिया और उनकी जरूरत को दुनिया में रखा और इंसानियत की तरफ नबूवत के मनसब पे फायज किया हुआ हर शख्स आदम का बच्चा है, इसके बावजूद अगर आदम को उस दिन इतना गम होगा तो मैं और आप कहाँ होंगे? ये अपने आप से सवाल कीजिए। हजरत नूह के पास लोग जाएंगे, उनसे भी वही सब कुछ कहेंगे, लेकिन हजरत नूह का भी वही जवाब होगा कि मैंने दुनिया में अपनी कौम के लिए बददुआ की थी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि आज मेरा रब गुस्से में है। ये किसके लिए अमल की बात है? ये हम जैसों के लिए, जुम्मा जुम्मा 8 दिन पढ़ाकर कोई साल, 2, 4, 5, 10 साल तबलीग करके कहते हैं, लो अल्लाह ने मुझे बख्शना नहीं है, मैं तबलीग करती हूँ, मैं मुअल्लिमा हूँ, मैं उस्ताजा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, क्या बनेगा उससे? 950 साल की तबलीग और फिक्र क्या पड़ी है कि अल्लाह आज उस बारे में ना पूछ ले जो मैंने अपने बेटे के लिए बात कर दी थी या कौम के लिए हलाकत की बात की थी। खैर, इब्राहिम के पास लोग जाएंगे, वहां भी यही कुछ होगा कि आप अल्लाह के खलील हैं, नबी हैं, अल्लाह के यहाँ आपका बड़ा मुकाम है, आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही बात फरमाएंगे जो आदम और नूह ने कही थी कि आज मेरा रब इस कदर नाराज है, इससे पहले था नहीं और ना होगा। मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे, जिसकी वजह से आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, कहीं अल्लाह ताला बाज बरस ना कर दे। बस तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर होंगे। जरा सा सोचिए, जरा इब्राहिम के साथ भी अपना हम थोड़ा सा रिलेशन जोड़ ले। ए अल्लाह, मैं इब्राहिम हूं, मैंने इतनी कुर्बानियां दी, आपके कहने पे बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी, अपनी बिरादरी से लड़ भिड़ गया, बाप ने घर से निकालने की धमकियां मुझे दे दी, अल्लाह आपको याद नहीं मैं कौन सा इब्राहिम हूं, मैंने तो बड़ा नेकियां किए। पूरा कुरान इब्राहिम के कसीदों से भरा हुआ है, अगर आपकी मेरी जुबान में बात करूं। लेकिन उस दिन ये 3 झूठ, तो हम में से जो बात बात पे झूठ बोलते हैं उनका क्या बनेगा, और उन सियासतदानों का क्या बनेगा जिनकी सियासत झूठ पे, और उस उम्मते मुस्लिमा और मोहम्मदिया का क्या बनेगा जिसके लिए अब झूठ कोई बात ही नहीं रहेगी? साहबा तो कहते थे हमने कभी झूठ का नाम भी नहीं सुना। मूसा के पास जाएंगे, वहां भी यही बात कि आप कलीम मुल्ला, अल्लाह ने आपसे बात की है, आपको फजीलत दी है, आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत है, जरा सिफारिश तो कीजिए। और याद रखिए, यहाँ सिफारिश जन्नत या जहन्नम की नहीं है। आजकल 40-50 टेम्परेचर है ना पाकिस्तान में, तो खड़े हो जाओ लाइन में, खिड़की नहीं अभी खोले, कोई बिल जमा कराने गए हैं अभी, हिसाब नहीं, कोई वीजा लगवाने गए हैं, भाई एक दफा लाइन तो खोलो। कैसी कैसी फिर हमारी बोलियां होती हैं, अभी सिर्फ ये बात है। मूसा कहेंगे, ना भाई ना, आज मेरा रब इतना गुस्से में है, मैंने दुनिया में एक आदमी को कत्ल किया था, जिसकी वजह से मुझे आज अपनी जान की फिक्र है, बस मैं सिफारिश नहीं करूंगा। यानी सबको अपने पिछले गुनाह याद होंगे जो कि माफ हो चुके हैं, कहेंगे जाओ ईसा के पास जाओ। लोग हजरत ईसा के पास आएंगे, कहेंगे आप तो अल्लाह के रसूल हैं, उसका फरमान है, उसकी रूह है, कलिमतुल्लाह इनका लकब था। आप देख रहे हमारी क्या हालत है, सिफारिश करें। वही अल्लाह के गुस्से और नाराजगी वाला जवाब देकर हजरत ईसा कहेंगे ना भाई ना, मेरी कौम ने तो मुझे इला बना लिया था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। आज ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले दुनिया का बिगेस्ट ग्रुप है। आज भी क्रिश्चियंस की तादाद सब मजाहिब के मानने वालों से ज्यादा है। अलग बात है कि आज वो भी नफ्स को मानने वाले पूछने वाले बन गए। आजकल हर दीन बदल चुका है। खैर, नबी सल्लम के पास लोग आएंगे, सैयदुल अंबिया रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़नबीन, इतनी शान है मेरे नबी की, और जाके आपकी तारीफें करेंगे। लियग़फिर अल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्खर। अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपके तो अगले पिछले गुनाह ही माफ कर दिए। आज आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। जरा अल्लाह से हमारे बारे में सिफारिश कर दें कि वो हिसाब शुरू करें। फिर अल्लाह के नबी फरमाएंगे, हाँ आज मैं सिफारिश के लायक हूँ, यानी कि मैं करूँगा। फिर आप मैदाने महशर से शिफात के बुलंद तरीन मुकाम, जिसको मुकामे महमूद कहा गया। अब ये जरफे जमान है कि मकान है, इसको छोड़ दीजिए, ये कॉर्नर भी हो सकता है, जिसको आप इंग्लिश में रैंक कहते हैं ना, अथॉरिटी भी कह सकते हैं, और कोई मुकाम भी है। कहते हैं कि जन्नत में अर्शे इलाही के नीचे की जगह होगी जहां आप होंगे, वहां ये सारा मामला होगा। या वो जगह मकामे महमूद है, या अल्लाह के नबी को जो इज्जत दी जा रही है वो, यानी तारीफ वाली जगह। और फिर आप कहते हैं कि मैं अल्लाह के यहाँ सजदे में गिर जाऊंगा, और फिर अल्लाह की हमदो सना करेंगे यहां तक कि अल्लाह ताला का गुस्सा दूर होगा या कम होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, मोहम्मद सर उठाओ, इरफा रासक, मांगो दिए जाओगे, सवाल करो मिलेगा, सिफारिश करो कबूल की जाएगी। यही है जिसको शिफाते कुबरा कहते हैं। ये है अल्लाह के नबी की गवाही। हशर की जमीन है, आप अपने नक्शे पे देखिए तो आप बिल्कुल सेकंड लाइन के पहले नक्शे पे खड़े हैं। हशर की जमीन पे खड़े लोग नबी सल्लम की शिफात से, कह लीजिए कि सिफारिश के इस बात अब हिसाब शुरू करवाने वाले हैं। इसके बाद फिर अल्लाह के नबी वहां से हटकर बिल्कुल मैदाने महशर में तशरीफ लाएंगे। फिर वहां अल्लाह ताला फरिश्तों की माइयत में मैदाने हशर में नजूल फरमाएंगे। याद है कोई कुरान की सूरत? वजा रब्बु का सूरत अम्मा या तसलून में भी है, वजी या उमा इजिन सूरह फजर में भी आती आयतें। यानी अल्लाह ताला फिर मैदाने हशर में आएंगे, फरिश्ते जमीन के किनारों पर सफे बांधे होंगे, और 8 फरिश्तों ने उस दिन अल्लाह का अर्श थामा होगा। अब जरा यहाँ अर्श की वो हैसियत देखिए, यहाँ अल्लाह की अदालत कायम होगी। फरिश्ते, अम्बिया, औलिया, सुलहा, इन सबको बतौर गवाह तलब किया जाएगा। यहाँ फरिश्तों को हुक्म होगा कि वो लोगों में इनके नामे अमाल तकसीम करेंगे। तो यहाँ से अब हिसाब किताब और किताबें, ये जो किताबें हैं ना, ये अमाल नामा है, मैदाने हशर में अब ये सब कुछ होने लगे हैं। ईमान वाले भी साथ साथ हैं, मुनकरीन भी साथ साथ चल रहे हैं, हिसाब किताब होगा। और वो कहते हैं ना, इकरा किताब कफा बि नफ्सी कल यौम अलैका हसीबा। आपकी रिटर्न्स वापस होंगी, जिनके पास बिजनेस है उनको बताया कि रिटर्न्स फाइल करना क्या होता है। हम में से हर एक फाइलर है, दुनिया में तो हमारा औरतों का क्या काम है, लेकिन वहां हम में से हर एक के अकाउंट्स मुरतब हो रहे हैं। वो सारे पलंदे अकाउंट्स कहते हैं आज के दौर में। और वहां अहले ईमान को सामने से, कुछ को दाएं हाथ से अमालनामे मिलेंगे, कुफार और मुशरिकीन को पुश्त से या बाईं तरफ से मिलेंगे। वम मन ये किताब बहु बिशिमाली, और दूसरी जगह क्या था, मैं वराय जहरी। जो ही अमालनामे पे नजर पड़ेगी, कच्चा चट्ठा सामने आ जाएगा, छुपा नहीं सकते। जैसे आप कहते हैं ना, नॉर्वे में आप टैक्स देना ही पड़ता है, छुपा नहीं सकते। यहाँ से लिमिट लग गई, पैसे ले नहीं जा सकते, पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। पैम्पर्स नहीं लेके जा सकते क्योंकि इंपोर्टेड चीजों पर टैक्स लग गया। खौफ का हाल तो कोई देखे। गिफ्ट्स नहीं लेके जा सकते, कहीं खुल ना जाए। चॉकलेट नहीं लेना, हालांकि वो पूरी बात पढ़ी बगैर सुने, खौफ की बात कर रही हूं। और क्या होगा, खोलेंगे धोनी को दे दो वापस, कुछ पैसे दे दो, वहां क्या बनेगा जब सारी जिंदगी का अकाउंट सामने होगा। वो सारी भूली बिसरी बातें जो यादें माजी थी ना, वो ऐसे ताजा हो जाएंगी जैसे आपकी आंखों से आप देख रहे हैं, और वहां फिर अहले ईमान के चेहरे रोशन होंगे, तरोताजा होंगे, वजूह यौमैज़ मुसफिरा, कहीं आता दौहे का तुम मुस्तबशिरा, स्माइली फ्रेश, मुस्कुराते हुए चमकते हुए होंगे, और खुशी खुशी दूसरों को अपने अमालनामे दिखाएंगे। हाउ मुखरऊ किताबिया, आओ देखो लोगों मेरा नामे अमल पढ़ो, जैसे दुनिया में अपनी पार्टीज दिखाता था, अपना घर दिखाता था, अपनी टेस्ला गाड़ी दिखाता था ना, अपने फेसबुक पे लगाकर अपनी सेल्फीज दिखाता था ना, अपने जोड़े, अपनी दुल्हन का कपड़े और अपनी शादियों के सारे अमालनामे दुनिया में खुद दिखाता था, पोस्ट करता था, स्नैपचैट करता था, वो छोटी छोटी वीडियोस बना के दिखाता था, लोगों को पता भी ना होता कि तुम किधर इस वक्त बैठे हो, लेकिन लोगों को दिखाता था, देखो ये पिज्जा खा रहा हूं, वहां सब कुछ दिखा होगा। कोई अपने हाथ चबा रहे होंगे हसरत और नदामत से, सूरह फुरकान, उंगलियां काटेगा, काश मैं अपना नाम माल ना दिया गया होता, या लैतनी लमूत किताबिया वला मदरी मा हिसाबिया, काश मैं ना जानता मेरा हिसाब क्या, यानी ये पेपर ही गुम जाते, रिजल्ट ही ना निकलता। सूरत अलहाका की आयत 25-26 को याद कीजिए, और बार बार अपने अमालनामे को कुफार और मुशरिकीन देखेंगे और कहेंगे या वही लताना माली हासिल किताब, हाय हाय ये क्या अजीब व गरीब हमारे फिगर सामने आ गए, इसमें तो हर छोटी बड़ी बात लिखी है, आज की स्क्रीन आपकी हर चीज को क्लिक करती, तो क्या वहां जाकर ये होना कोई अब अचंभा रह गया। पहले तो लोग सोच सकते थे, आज तो नहीं, ला युगादिरु सगीरतं वला कबीरा इल्ला अहसाहा, हाय हमारी कमबख्ती, ये नामे अमाल कैसे, ये तुम्हारे खिलाफ एक FIR कटी हुई है, ये तुम्हारे खिलाफ मुकदमे हैं। छोटी बातें बड़ी बातें, आप देखिए एक हुकूमत जाती है तो पिछली का एहतसाब शुरू हो जाता है, आने वाले उसके साथ थानेदार बन जाते हैं, फिर जब वो जाएंगे तो कोई दूसरे होंगे, और हर जुमे को सूरत काहफ आयत 49 में आप ये बात पढ़ते हैं। तो यहां से अमाल नामों की तकसीम का मामला होगा, और उसके बाद फिर सवाल जवाब शुरू होंगे, क्वेश्चन जिसको आप हिसाब कहते हैं। अल्लाह ताला जिस जिस से चाहेंगे, बगैर किसी ट्रांसलेटर, जिसको आप तर्जुमान कह लें, ओवरशेख, ब्राह रास्त सवाल करेंगे। सबसे पहले मुशरिकों से पूछा जाएगा कि बताओ भी तुमने शिर्क क्यों किया था, अब जरा सोचिए ना, हाथ नहीं कांपने लगते, थानेदार साहब आ जाए और पूछे चोर को ये चोरी क्यों की थी। मुशरिक उस वक्त इनकार करेंगे और अल्लाह की कसम खाकर कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, क्या कहते हैं, हमने तो कभी शिर्क ही नहीं किया, कसम भी अल्लाह की खाई, रब भी बोला, लेकिन साथ ही कहते मुशरिक, क्योंकि दुनिया में भी झूठ बोलते थे ना। फिर वहां किरामन कातबीन की गवाहियां होंगी, वो मुशरिकीन के शिर्क की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक फिर इनकार करेंगे, फिर शिर्क से भरा हुआ नामे अमाल, किरामन कातबीन का पाइल अप किया हुआ अकाउंट्स का रिकॉर्ड उनके सामने रख दिया जाएगा, फिर भी नहीं मानेंगे, देखिए जरा धान के पान। फिर उनके दौर के अंबिया, उलमा या औलिया, जो भी उस दौर में उन तक दीन की बात लेकर पहुंचा था, उसको बुलाया जाएगा कि गवाही दो, ये सब उनके शिर्क की गवाहियां देंगे, मुशरिक फिर नहीं मानेगा। फिर किसी कब्र पे जाता था, किसी मजार पे जाता था, किसी बुत के पास जाता था, उसको बुलाया जाएगा, जमीन भी गवाही देगी कि ये यहां खड़ा होकर शिर्क करता था, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेगा। जब सारी गवाहियों को मुशरिक ठुकरा देगा, तो फिर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहेंगे अल्लाह अकबर, या अल्लाह क्या तूने अपने बंदों को जुल्म से पनाह नहीं दी, यानी कि अब तू ही हमारी जान पे रहम कर दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने अपने बंदों को जुल्म से पनाह दी है। मुशरिक कहेंगे फिर आज हम सिर्फ अपनी जात की गवाही मानेंगे, हमें किसी की नहीं चाहिए, उनको अपने ऊपर मान होगा कि हम जो कह रहे हैं वो मान लो। अल्लाह कहेंगे नो प्रॉब्लम, और फिर अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अईदीहिम, सूरह यासीन में पढ़ते हैं, सूरह हामिम सजदा में अल्लाह कहते हैं उनके ऊपर गवाहियां देंगे, वो कहेंगे तुम्हें किसने बुला दिया। इस तरह इंसान का अपना जिस्म उसकी गवाही देगा। एक लेक्चर मैंने काफी पहले थोड़ा उसका खुलासा दिया भी था, इंसानी आज़ा की अदालत में। پورے قرآن کی وہ آیتیں جس میں ہمارے اپنے جسم کے اعضاء کی گواہیوں کا تذکرہ. پھر وہ کہیں گے تم کیسے بولے, تو کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. گوشت کا لوتھڑا زبان کیسے بول رہی ہے, اللہ کے حکم سے بول رہی ہے, تو ہاتھ بھی بول لیں گے تو کیا ہوگا. یہی معاملہ پھر ہر بندے کے ساتھ مختلف ہوگا. یہ تو کافر تھا نا, منافق سے بھی ایسی ہی باتیں ہوں گی, تجھے میں نے عزت دی, حکومت دی, تمہیں اہل و عیال دیے, مال و دولت دیے, کہے گا سب دیا. تو اللہ کہے گا کیا تجھے یقین تھا قیامت آنے والی ہے, کہے گا تھا. اللہ میں نے تیرا کلمہ پڑھا, تیری کتاب پڑھی, تیرے رسول پر ایمان لایا, روزے رکھے, زکاة دی. یعنی منافق وہاں اپنی تعریفیں کرے گا, اس کو دنیا میں بھی اپنی تعریفیں اچھی لگتی ہے. پھر اللہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم گواہ لاتے ہیں. منافق سوچے گا میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا تھا, آج میرے خلاف کون گواہی دے گا. یعنی دیکھنا منافق کا ایشو کیا ہوتا ہے, کہ وہ اپنا کفر چھپا رہا ہوتا ہے. اتنا ہی فرق ہے نا, دوسروں میں تو بڑا نیک بنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بھی منہ پہ مہر لگا دیں گے, اور سب سے پہلے اس کی ران, یہ جو ہوتی ہے نا تھائز, اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے. پھر اس کی ران اور اس کے بدن کا گوشت, اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا ایک ایک رواں اس کے نفاق کی گواہی دے گا. نہ یقین آئے نا تو سورت حدید میں جا کے نفاق کے وہ چار مرحلے پڑھ لیجیے. میدان حشر سے پہلے پل صراط پہ بھی منافق ایکسپوز ہو جائے گا. پھر وہ گواہی دیں گے کہ اللہ نماز روزہ کرتا تھا لیکن ساتھ کفار کی دوستی پہ بھی بڑا ناز تھا, مفادات کا ان کے تحفظ کرتا تھا, جینا مرنا اس کا ان کی خوشی کا تھا, معاشرے کے رنگ میں جاتا تھا اور مسلمانوں کو بس دھوکے دیتا تھا, اور نام کی نمازیں روزے تھے. اللہ اتنا غضبناک ہوں گے کہ پھر اس کے عمل کے مطابق اس کو جہنم میں ڈالیں گے جتنی دیر اللہ چاہے.